मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 29 जुलाई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मोहम्मद खालिद, आप रामपुर कजरहाई उत्तर प्रदेश से हैं। महेश कुमार गुप्ता, आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। शैम्पू गिरी, आपका गांव है गोठनी, जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हैं। आयुषी अग्रवाल, आपका गांव है खटीमा, जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हैं। वीरेंद्र कुशवाहा, आप दतिया मध्य प्रदेश से हैं। और अभय कुमार रे, आपका गांव है कटहरी, जिला बेगूसराय बिहार से हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं बिल्कुल ही एक अलग विषय पर बात करने जा रहा हूं। इसका खुलासा मैं बाद में करूंगा, फिलहाल मैं इसे नाम देना चाहूंगा भाषाई न्याय का आग्रह। लेकिन इससे पहले कि हम लोग मुख्य विषय पर आएं, आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। फिलहाल देखिए, कर्नाटक में आपको एक राजनीतिक उठापटक दिखाई दे रही है और एक लंबे समय से ये राजनीति चली आ रही है। कांग्रेस और जेडीयू का गठबंधन था, वहां सरकार बनी। इसके बाद कांग्रेस के कुछ एमएलएज ने पार्टी छोड़ने के लिए अपना पत्र दे दिया कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके बाद की सारी घटनाएं, जो कहानियां जो फिल्मों में होती हैं, लगभग उस तरह की स्थितियां आप देख रहे हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। चलिए, इसके बाद विश्वास मत लिया गया, जो सरकार थी कुमार स्वामी जी की, वह सरकार गिर गई। इसके बाद फिर कुछ दिनों तक मामला चलता रहा और अब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बकायदे, जो येदियुरप्पा जी हैं, उन्होंने शपथ ले ली है और अब अपना विश्वास मत प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये घटना है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में घटना पर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो फिर क्या पूछा जाएगा? क्यों यह इंपॉर्टेंट है? यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस घटना के पीछे पॉलिटी क्या है और इस घटना के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इन दोनों के बारे में, दोनों को आधार बना करके कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, पॉलिटी कहा मैंने और कॉन्स्टिट्यूशन कहा, इन दोनों में क्या फर्क है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बकायदे हमारे पास लिखित रूप में है और हमारी पॉलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करना चाहिए, राइट? क्योंकि हमारा संविधान है, तो हमारी पॉलिटी हो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले। लेकिन ऐसा होता कहां है, क्योंकि हम संविधान की व्याख्या अपने ढंग से कर सकते हैं, करते ही हैं। संविधान में सारी चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं लिखी गई, कुछ छोटी छोटी चीजें तो लिखी नहीं गई हैं। इसीलिए संविधान से मार्गदर्शन लेकर के हमने दुनिया भर के एक्ट बनाए हैं। दुनिया के सारे देश यही करती है। संविधान तो बेसिकली आपका राजमार्ग है, आप चल रहे हैं और जरूरत के हिसाब से आप नियम कानून बनाते चले जा रहे हैं। अब वो जो नियम कानून बन रहे हैं, फिर उन नियम कानूनों की व्याख्या हम अपने ढंग से कर रहे हैं, उनमें हम परिवर्तन अपने ढंग से कर रहे हैं। तो जब हम उनकी व्याख्या करते हैं और उन व्याख्याओं के आधार पर फिर हम राजनीति को स्वरूप देते हैं, तो पॉलिटी हो जाती है। तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इस घटना में इन दोनों की तलाश करनी पड़ेगी। जब ये स्थिर हो जाएगा तब हम इस पर आगे बात करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट में आपको एक आइटम प्रोवाइड किया गया है जो जल संबंधी तथ्यों पर है। मैं आपको बता चुका हूं, चूंकि सरकार ने घोषणा की है कि सबके घर में नलों से पानी उपलब्ध कराया जाएगा आगामी 5 सालों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें जल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। ये फैक्ट्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। वो ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप जल संबंधी ऐसे लिखने में या बहुत से प्रश्नों के उत्तर देने में तर्क के लिए कर सकते हैं, तो इसीलिए स्पेशली आपको एकेडमी प्रोवाइड कर रही है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स, बिजनेस स्टैंडर्ड का। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इसमें बेसिकली आप जानते हैं कि हमारी जो राजनीति की प्रणाली है हमारे देश की, वो संघीय प्रणाली है ना, जहां एक केंद्र सरकार है और ढेर सारी राज्य सरकारें हैं और बकायदे हमारे संविधान में इनके अधिकार क्षेत्र और सब चीजें निश्चित की हुई है, लिखित रूप से हैं। कभी कभी इस केंद्र सरकार, चूंकि बहुत ही शक्तिशाली होती है और होना भी चाहिए, ऐसी स्थिति में उसके कुछ ऐसे कदम दिखाई देने लगते हैं कि लोगों को लगता है कि यह संघवाद के विरुद्ध है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। तो अभी खासकर जो हमारा 15वां वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग को सरकार ने एक जिम्मेदारी दी है। एक तो उसका कार्यकाल बढ़ा दिया है और कार्यकाल बढ़ाने के बाद उसने कहा है कि जो हमारे देश की रक्षा और जो आंतरिक सुरक्षा के लिए जो धन की जरूरत होती है उसकी अलग से व्यवस्था करने की कोशिश की जाए। इसका मतलब है कि उसके लिए पैसा निकाल लेने के बाद और फिर जो पैसा बचेगा वह राज्यों में वितरित किया जाएगा। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद आपकी समझ में आ जाए। और आपको मालूम है कि जो 15वां वित्त, जो वित्त आयोग कहिए, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में बकायदे इसका उल्लेख है और यह मूलतः केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को देती है। और धन कितना महत्वपूर्ण है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे यह जो एडिटोरियल कमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो मित्रों यह मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अब मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं और उसका शीर्षक है, जैसा मैंने कहा, भाषाई न्याय का आग्रह। शायद आप सब इशारे के तौर पर ही सही लेकिन कुछ न कुछ समझ गए होंगे, अनुमान आपको लग गया होगा। दोस्तों, कुछ समय से मैं लगातार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को संबोधित कर रहा हूं और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मेरा यह संबोधन कहीं भी भावनात्मक नहीं है, रियलिटी पर आधारित है, यथार्थ पर आधारित है। बहुत सोचने समझने के बाद जो मुझे लगा कि क्यों हिंदी और जो हमारी दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके स्टूडेंट लगातार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पिछड़ते चले जा रहे हैं, उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो फिलहाल मेरी पकड़ में आया वो लगा, जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनकी भाषा को लेकर, अनुदित भाषा, और क्वेश्चन पेपर दो ही लैंग्वेज में होते हैं, आपको मालूम है, इंग्लिश में और हिंदी में उनका अनुवाद होता है। इसको लेकर के मैंने एक आर्टिकल लिखा और वह आर्टिकल दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन में प्रकाशित हुआ। इसके लिए मैं दैनिक जागरण के प्रति आप सबकी ओर से और अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। शनिवार को वह आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, राइट, और उस आर्टिकल को बकायदे हम लोगों ने अपने प्रेस क्लिपिंग्स में डाला हुआ है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जब यह आर्टिकल प्रकाशित हुआ तो शनिवार को दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, कई राज्यों से मेरे पास काफी फोन आए उस आर्टिकल के फेवर में। इसका मतलब यह हुआ, जो मैंने महसूस किया, कि आर्टिकल को लोगों ने पसंद किया है और कहीं ना कहीं वो खुद के हितों से उसे जुड़ा हुआ भी पाया है। उन्हें लग रहा है, दूसरों को भी लग रहा है कि नहीं, ये जो बात कही गई है सही कही गई है और मेरी कोशिश रही है कि उसमें जो भी मैं बात कहूं वो तथ्य परक हूं, मनगढ़ंत नहीं, काल्पनिक नहीं, सुनी सुनाई नहीं, बल्कि तथ्य परक हूं। और जब आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो शायद आपको भी ऐसा लगेगा। तो दोस्तों, इसको शीर्षक मैंने दिया भाषाई न्याय का आग्रह। भाषाई न्याय यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है और शायद आप लोगों को भी लग रहा हो कि जाने अनजाने में हिंदी के स्टूडेंट्स के साथ, और जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं के भी स्टूडेंट शामिल हो जाते हैं, जो अनुवाद की भाषा दी जा रही है उसके कारण अन्याय हो रहा है, क्योंकि उन्हें अनुवाद समझ में ही नहीं आता। प्री एग्जामिनेशन में जहां 0.01% मायने रखता है, अगर वहां हिंदी और दूसरी भाषा के स्टूडेंट्स 6-7-8 क्वेश्चन समझ ही न पाए तो अपने आप ही वो प्रारंभिक स्तर पर बाहर हो जाते हैं। तो मित्रों, अब किया क्या जाए, बस उसी के लिए मैंने कहा भाषाई न्याय का आग्रह। हम आग्रह करेंगे सरकार से, यूपीएससी से, कि भाषा के बारे में हमें न्याय उपलब्ध कराया जाए। हम कोई उनसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम उनसे एक विनम्र आग्रह कर रहे हैं। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह की बात कही थी, वहीं से मैंने एक शब्द लेकर के इसे कह लिया न्याय का आग्रह। हम न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का ये आदर्श वाक्य अपने आप में ही है कि सेम प्लेइंग फील्ड, यानी कि वो जो परीक्षा लेगा वो इस तरीके से लेगा कि सभी को समान अवसर मिल सके, समानता का बोध हो, बस हम उसी की मांग कर रहे हैं। तो मित्रों, वह आर्टिकल सैटरडे को छप चुका है, वो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो अब आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है, देखिए, सरकार को बताना पड़ेगा, संस्थान को बताना पड़ेगा। नीतिगत निर्णय तो सरकार ने ले लिया है कि हिंदी सहित और दूसरे हमारे संविधान में जो उल्लिखित भाषाएं होंगी उनको माध्यम बनाकर के आप यूपीएससी में अपीयर हो सकते हैं, राइट। तो नीतिगत मामले में तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। ऐसी कोई नीति नहीं बनी है कि नहीं नहीं ऐसी हिंदी होनी चाहिए जो किसी की समझ में ना आए, या बहुत कठिन हिंदी हो या संस्कृत निष्ठ हिंदी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। करना क्या है, बहुत छोटा सा है काम है कि अनुवाद को ठीक कर लिया जाए। लेकिन देखिए जो बड़े संस्थान होते हैं, संस्थान के जो शिखर पर बैठे हुए लोग होते हैं, उनके पास बहुत से दूसरे दायित्व होते हैं, कभी कभी उनके नॉलेज में ये बात नहीं आती है। थोड़े बहुत स्तर पर अगर लाया भी जाता है तो उनकी प्राथमिकता में वो चीज नहीं होती है, लेकिन स्टूडेंट तो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारे आपके लिए ये प्राथमिकता की बात हो सकती है, सबके लिए नहीं हो सकती। तो मित्रों अब मैं आपसे केवल दो आग्रह करने जा रहा हूं, प्लीज इसमें आप मेरा सहयोग करें। और सच मायने में यह है कि मेरा ही नहीं बल्कि ऐसा आप स्वयं का सहयोग करेंगे। और यह सहयोग मैं केवल हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थियों से ही नहीं मांग रहा हूं, नागरिकों से ही नहीं मांग रहा हूं, बल्कि सच पूछे तो इंग्लिश भाषियों से भी कह रहा हूं जो इंग्लिश मीडियम से अपीयर होते हैं, क्योंकि वो भी जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं हिंदी भाषा के साथ कुछ अन्याय तो हो रहा है, उनको भी महसूस होगा। और दोस्तों जब आप बराबर की टीम से बहुत ही न्यायिक तरीके से साफ सुथरे तरीके से जीतते हैं तो उसका प्राइड अलग होता है। जब आप सेम प्लेइंग फील्ड में खेलेंगे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट से, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम के स्टूडेंट से और सेलेक्ट होंगे तो आपके अंदर भी एक गर्व की अनुभूति होगी कि नहीं सही बात है कि हम सही प्रतियोगिता जीत कर आए हैं। जैसे अभी आप देखिए कि जो हमारा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ क्रिकेट का, अब आप विवादास्पद बन गया, ठीक है इंग्लैंड चैंपियन बन गया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं तो होगा यार हमारा संदेहास्पद है ये कप, तो मन में कहीं खराश रह जाती है। तो अंग्रेजी भाषा के लोग भी इस न्याय के लिए अगर मदद करें तो बहुत अच्छी बात है, और इनफैक्ट उन्हें करना भी चाहिए। तो दोस्तों मदद क्या है, मदद बहुत सिंपल सी है। पहली बात तो यह है कि इसको बकायदे हमने अपने फेसबुक पर भी डाल रखा है और हमारे ट्विटर पर भी है। तो आप सबसे गुजारिश है, पहला पॉइंट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में केवल यही नहीं कि जो एग्जाम में बैठ रहे हैं वही नहीं, पब्लिक को मालूम होना चाहिए, नागरिकों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में यही तो ताकत है, नागरिक ही ताकत है, लोग ही ताकत है। हाँ हमारी मांग अगर न्यायपूर्ण है तो फिर हम कमजोर हैं, न्यायपूर्ण है तो हमारी ताकत है, और लोग जैसे ही जुड़ते चले जाएंगे हमारी ताकत बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों पहला है कि फेसबुक ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जान इसे पहुंचाएं। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको जो आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है उस आर्टिकल की एक कॉपी आप ले लें, हार्ड कॉपी ले लें, और उस कॉपी के साथ अपना एक छोटा सा आवेदन, चाहे एक लाइन का ही सही हो, अध्यक्ष यूपीएससी को लिखे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, और अपनी समस्या लिख दें। चाहे भले ही ये लिख दें कि सर ये आर्टिकल हम भेज रहे हैं, ये हमारी सही समस्या है, कृपया आवश्यक कदम उठाएं, इसे ठीक करें, जो भी आप ठीक समझते हो, एक छोटा सा आवेदन पत्र लिख दें, अपना नाम लिख दें, उसे साइन कर दें, अपना एड्रेस लिख दें, क्योंकि उसके बिना फिर उसकी मान्यता नहीं होती है। और वो जो लेटर है सिंपल लेटर है, सिंपल डाक से आप भेजें और संघ लोक सेवा आयोग को भेज दें, और ऊपर एड्रेस मैं आपको बता देता हूं, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली, बस, चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली, ये करके आप उनको भेज दें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप भेज पाएंगे, आप मान करके चलिए कि उतना ही ज्यादा प्रभाव वहां पड़ेगा, क्योंकि वहां के चेयरमैन को और वहां के अधिकारियों को लगेगा कि भाई वास्तव में बात कुछ बड़ी है, राइट। तो अगर एकदम छोटी सी बात होती तो कोई दो चार पांच दिन में बात खत्म हो जाती। अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या तक आप पहुंचा सकेंगे तभी आप मान करके चलिए कि हम परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। बाकी लोग जो आपके प्रति संवेदना रखते हैं, वो संवेदना रखने वाले लोग आपके साथ हैं, अपने अपने स्तर पर सभी काम कर रहे होंगे। और सच पूछे तो देखिए ये मामला केवल हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का ही नहीं है बल्कि राष्ट्र का भी मामला है, हमारी भाषा है। और अगर सरकार ने ये नीति बनाई हुई है कि हम हिंदी या दूसरी भाषाओं के माध्यम से सिविल सर्विस में अपीयर हो सकते हैं, तो भाषा ऐसी होनी ही चाहिए जो प्रयोग में लाई जा सके, सके और जो समझने योग्य हो, और आप यही तो मांग कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको अपनी ताकत दिखानी होगी, अपनी समस्या, यूं कह लीजिए, ताकत की बात चलिए हम छोड़ भी दे, तो अपनी समस्या को बहुत ही जेन्यून तरीके से पूरी विनम्रता के साथ सरकार और सरकार की संस्थाओं तक पहुंचानी ही चाहिए, तभी तो हम कुछ परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह मेरी आप सबसे आग्रह है, गुजारिश है, निवेदन है कि प्लीज इसमें कोई भी आप कोताही न दिखाएं, आलस्य न करें, इसे टालें भी नहीं, इसमें आपको ज्यादा वक्त नहीं लगना है और तुरंत आप इस काम को कर डालें। देखते हैं कि आगे क्या होगा और डेफिनेटली सफलता मिलेगी ही। तो मित्रों, यह था आज के मुख्य विषय के बारे में। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: शशिकांत सिंह पश्चिम बंगाल से, गणपत मेघवाल बीकानेर राजस्थान से, विश्वनाथ सोनल कहालकर भंडारा महाराष्ट्र से, प्रेमचंद यादव, सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, इमरान खान, अनिल कुमार सिंह दिल्ली से, सूरज कुमार कटिहार बिहार से, जन्मेजय शर्मा, लालजी जायसवाल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, विजेंद्र कुमार, मनोज गुप्ता, सन्नी कुमार भागलपुर बिहार से, श्वेता राज, सगुना श्रीमाली अहमदाबाद गुजरात से, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से और राजेश कुमार चंडीगढ़ से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।